रात काफी गहरा चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। आदित्य की गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ देर पहले तक जो माहौल हंसी मजाक से भरा हुआ था, अब वहां सन्नाटा था। कबीर खिड़की के बाहर अंधेरी में टकटकी लगाए बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नजरें कहीं बहुत दूर अतीत में खो चुकी थीं। अनामिका बार बार चोरी चोरी उसे देख रही थी। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी पूछकर कबीर के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। आदित्य ने रियर व्यू मिरर में दोनों को देखा और फिर धीरे से गाड़ी की स्पीड कम कर दी। कुछ ही देर बाद वो लोग पहुंच चुके थे। अनामिका गाड़ी से उतर गई। वहीं गाड़ी से उतरते वक्त अनामिका ने एक बार फिर कबीर की तरफ देखा। वो चाहकर भी उससे कुछ नहीं कह पाई। अनामिका वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। फिलहाल वो सीधा अंदर चली गई। अब गाड़ी में सिर्फ आदित्य, झलक और कबीर थे। जैसे ही कबीर गाड़ी से उतरने लगा, आदित्य ने उसे रोक लिया। अब कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, कबीर अब बहुत हो चुका, कब तक अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर रखोगे? कबीर ने तुरंत नजरें फेर ली और मायूस सा होकर बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तभी झलक धीरे से बोली, लेकिन कभी कभी दर्द बांटने से उसका बोझ हल्का हो जाता है कबीर। कबीर हल्का सा हंस पड़ा। वो हंसी नहीं थी, वो टूटे हुए इंसान की मजबूर मुस्कान थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं झलक भाभी, जिन्हें जितना दबाओ उतना ही कम तकलीफ देते हैं। अगर उन्हें शब्द दे दिए जाएं तो वे फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। आदित्य ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम अकेले नहीं हो, बस इतना सुनना था कि कबीर की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में इस वक्त हर कोई सो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वो बालकनी में खड़ा लगातार झलक के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी उंगलियां भींचते हुए धीमी आवाज में कहा, कल सिर्फ 24 घंटे, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। या तो तुम हमेशा के लिए अपना जुनून खो दोगी, या फिर किसी की भी नहीं रहोगी। उसकी आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से दरवाजा खुला, रणविजय अंदर आया। दोनों की नजरें मिली। रणविजय मुस्कुराया और बोला, लगता है नींद नहीं आ रही। सिद्धार्थ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रणविजय धीरे धीरे उसके पास आया, बस ये याद दिलाने कि कल बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारी शादी और किसी की बर्बादी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो। रणविजय के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। कल ऐसा खेल होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सिद्धार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। क्या करने वाले हो? रणविजय हंस पड़ा, सरप्राइज, लेकिन इतना याद रखना, कल के बाद झलक की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी देखता हूँ वो कैसे बचती है कल। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धार्थ काफी देर तक उसी की तरफ देखता रहा। पहली बार उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो मन ही मन बोला, रणविजय आखिर करने क्या वाला है? कहीं उसका प्लान मेरे लिए भी खतरा तो नहीं बन जाएगा? उधर उसी समय फिलहाल झलक आदित्य और कबीर को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसे लग रहा था अगर वो वहां रही तो शायद कबीर अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए झलक अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। वो बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, सब तैयारी पूरी हो चुकी है, मुझे बस आपके एक इशारे का इंतजार रहेगा। झलक के होठों पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, बहुत अच्छा, याद रखना कल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक सबूत सही समय पर सामने आना चाहिए, इस बार कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, यस, इस बार पूरा खेल हमारे कंट्रोल में होगा। कॉल कटते ही झलक ने गहरी सांस ली। उसने दूर आसमान में चमकते चांद को देखते हुए कहा, कल सिर्फ एक शादी नहीं होगी, कल कई चेहरों से नकाब भी उतरेंगे, और जिन लोगों ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की है कल उनकी बारी होगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। अगली सुबह पूरा खुराना मेंशन रोशनी और फूलों से जगमगा रहा था। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। कोई सजावट देख रहा था, कोई केटरिंग का इंतजाम, तो कोई बारात की तैयारियों में लगा हुआ था। आज सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी का दिन था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे हर किसी के मन में कोई ना कोई तूफान चल रहा था। सिद्धार्थ आईने के सामने खड़ा शेरवानी पहन रहा था। उसके चेहरे पर दूल्हे वाली खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। वो आईने में खुद को देखते हुए मन ही मन बोला, बस कुछ ही घंटों की बात है झलक, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि सिद्धार्थ खुराना से दूर जाने की कीमत क्या होती है। तुम जितना मुझे जलाने की कोशिश करोगी, आज तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब हो जाएगी, और जो तुमने आकांक्षा और मेरी शादी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे, सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं आज आकांक्षा से शादी करके रहूंगा, देखता हूँ तुम्हारा जुनून कितना है मुझे लेकर। तभी दरवाजा खुला और उर्वशी अंदर आई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, भगवान करे आज का दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आए। सिद्धार्थ ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उर्वशी ने गौर से उसे देखा। क्या बात है सिद्धार्थ, तुम खुश नहीं लग रहे? कुछ नहीं दादी, उर्वशी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि उनके बेटे के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ रणविजय अपने कमरे में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। सुनो, जैसे ही झलक यहाँ पहुंचे मुझे तुरंत खबर चाहिए, और याद रखना आज एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से जवाब आया, सर सब लोग अपनी अपनी जगह पर हैं, पूरा इंतजाम हो चुका है। रणविजय के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया, आज का दिन इतिहास बन जाएगा, रणविजय ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। झलक और अनामिका को घूरते हुए मन ही मन कहा, झलक अनामिका आज मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी औकात उजागर कर दूंगा। आज के बाद तुम दोनों किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। तुमने जो खेल शुरू किया है उसका अंजाम तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। आज यही सबकी किस्मत बदलने वाली है। उधर झलक भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के गोल्डन रंग का बेहद खूबसूरत सूट पहना था। चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप था, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत लग रहा था। आदित्य उसे देखकर कुछ पल के लिए बस देखता ही रह गया। क्या हुआ, झलक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें पहली बार देखे तो यकीन ही नहीं करेगा कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। झलक हंस पड़ी, यही तो मेरी ताकत है, सामने वाले को कभी अंदाजा ही नहीं लगने देना चाहिए कि अगली चाल क्या होगी। तभी कबीर भी वहां आ गया। उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, चले आज का दिन लंबा होने वाला है। वही अनामिका भी तैयार होकर नीचे आई, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार कबीर पर ही जा रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, कल उसकी आंखों में जो दर्द था वो झूठा नहीं हो सकता, आखिर उसने ऐसा क्या खोया है। तभी आदित्य ने अनामिका के मन की उलझन महसूस कर ली और वो उसके पास आकर धीमी आवाज में बोला, अनु हाँ आज सब खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें कबीर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अनामिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। करीब एक घंटे बाद झलक की गाड़ी खुराना मेंशन के मुख्य गेट के सामने आकर रुकी।
जैसे ही वो नीचे उतरी वहां मौजूद कई लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, कुछ लोग फुसफुसाने लगे। यही है झलक, आज भी आ गई, देखना आज जरूर कुछ होगा। लेकिन झलक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर की तरफ पड़ गई। दूर खड़ा रणविजय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, वहीं सिद्धार्थ भी लगातार उसी को देख रहा था। दोनों के दिमाग में अपनी अपनी चाल चल रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि आज इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद है, जो न झलक का था न सिद्धार्थ का, और उसका पहला कदम पूरे खेल की दिशा बदलने वाला था। वहीं आकांक्षा का दिल पूरी तरह घबराया हुआ था, उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। तभी नैना ने उसका हाथ थाम लिया और उसे ढांढस बंधाते हुए बोली, बेटा अब सब कुछ तैयार हो चुका है, सारी मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सभी खास मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं, दूल्हा भी मंडप में बैठकर सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो अब और घबराने का वक्त नहीं है, और हाँ हमें खबर मिल चुकी है कि झलक, अनामिका और आदित्य राणा भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके साथ उनका एक चमचा भी है। ये कहते हुए उसने कबीर की तरफ इशारा किया और फिर बोली, बेटा अब डरने का नहीं बल्कि अपनी मंजिल को पाने का वक्त है, चलो जल्दी करो। इतना कहकर नैना आकांक्षा को अपने साथ लेकर बाहर आ गई। आकांक्षा आज बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार हुई थी। उसने एक बेहद महंगा और ब्रांडेड लहंगा पहन रखा था, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखरकर सामने आ रही थी। फिलहाल वो शर्माते हुए धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई मंडप तक पहुंची और जाकर सिद्धार्थ के बराबर में बैठ गई। उसी समय खुराना मेंशन के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक रहस्यमयी शख्स नीचे उतरा। उसके चेहरे पर काला मास्क था, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक बड़ा सा सीलबंद बैग। उसने मेंशन की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया। अब शुरू होगा असली खेल।